जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपात् दामयं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की थी चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं उनमें से कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु गया यात्रा में जाते हैं और श्रीलेश्वर परिवार का आश्रय स्वीकार करते हैं। तो ऐसे निमाय पंडित अपना जो विद्या विलास या जो बहुत अधिक उदंडता है अहंकार अपने ज्ञान और पांडित्य का है उसको एक प्रकार से छोड़ देते हैं गया यात्रा में और आने के बाद निमाय पंडित का जो ये उद्धट आचरण है उसमें पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ गया था। और जैसे कल हमने चर्चा की कि जैसे उन्होंने नवद्वीप में प्रवेश किया प्रवेश करते ही नवद्वीप के निवासियों को लगा कि हमारे प्राण वापस आ गए हैं। जिस प्रकार से मछली जल से बाहर हो तो उसके लिए जल ही प्राण है उसी प्रकार से नवद्वीप वासियों के लिए चैतन्य महाप्रभु ही प्राण है। तो जैसे वो वापस आते हैं उनका स्वागत करते हैं जो उनसे आयु में बड़े थे उनको सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं जो आयु में छोटे थे वो उनका आलिंगन करते हैं हम कुछ उनका हाथ पकड़कर नवद्वीप में प्रवेश करते हैं। लेकिन सबके साथ निमाय पंडित का बहुत ही अधिक विनयशील विनम्रता पूर्ण आचरण था और ऐसे विनम्रता पूर्ण आचरण के द्वारा सबको वो अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे और सबके पास उन्होंने कहा कि वास्तव में मेरी ये जो गया यात्रा है वो सफल हो गई है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि आप सबका आशीर्वाद था मेरी यात्रा के लिए। तो इस प्रकार से वो ग्रेटफुल का जो भाव है कृतज्ञता का जो भाव है वो इन भक्तों के प्रति प्रदर्शित कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। और जैसे ही महाप्रभु को देखा तो उनकी जो भार्या विष्णुप्रिया अत्यधिक आनंदित होती है और सची माता भी आनंद अनुभव करती है। तो फिर हर एक व्यक्ति जैसे कोई यात्रा में जाता है तो उसको हमेशा लगता है कि कब जाकर मैं बताऊं कि मैं कहां कहां गया था क्या क्या किया मैंने। तो वैसे निमाय पंडित को भी लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए अपनी यात्रा के बारे में। पूछने से पहले ही उन्होंने नवद्वीप वासियों को बताना शुरू किया और वो भूले नहीं गया का जो विशेष बदला उनमें आया था उसका वर्णन करना भूले नहीं। तो उन्होंने अंत में, जैसे हमने कल यज्ञ करते हुए कहा था कि ऐसे निमाय पंडित ने अंत में अपने कुछ अंतरंग सखाओं को, अंतरंग शिष्य या स्टूडेंट्स या कुछ डिवोटीज को अपने अंतपुर अंतरूम में लिया और उनको कहा कि मैं अपना जो हृदय है वह आप सबके पास खोलना चाहता हूं, अपने हृदय की बात बताना चाहता हूं। तो ऐसे निमाय पंडित ने कहा, हे मेरे प्रिय बंधु, कि उस स्थान का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, फिर भी मैं वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि उस स्थान में जैसे मैंने प्रवेश किया उस स्थान के प्रभाव के कारण कृष्ण का जो स्मरण है वो मेरे लिए मेरे हृदय में अत्यधिक जागृत हो उठा। और जैसे मैंने वो विष्णु पद जहां कृष्ण के चिन्ह है चरणों के वहां प्रवेश किया, ब्राह्मणों की जो मंत्र ध्वनि वेद ध्वनि उच्चरणों का जो महिमा है वो सबको जैसे मैंने सुना तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। अनवरत आंसुओं की धारा मेरे इससे बह रहे थे। तो जैसे महाप्रभु यह वर्णन कर रहे थे नवद्वीप में आकर भी, तो भी नवद्वीप में वास्तव में वो गया को अपने हृदय में कैरी करके लाए थे। उस दिन हम वहां थे, नवद्वीप में थे, तो कुछ फोटोज खींच रहे थे अलग अलग प्लेसेस का। तो प्रभुपाद के शिष्य मुझे कहते हैं, प्रभु ये तो धार हम हृदय में फोटोग्राफ्स लेने चाहिए। कहा लेने चाहिए फोटोग्राफ्स? हृदय में लेने चाहिए। हाँ, तो फिर काफी देर उनसे बात हुई, तो मैंने कहा प्रभु जी आप कब से आ रहे हो मायापुर? कहते मेरे 40 साल हो गए हैं। कब से आ रहा हूं मायापुर? 40 सालों से। और बड़े सिंपल एक बोट में बैठकर हम साथ में जा रहे थे, तो कह रहे थे उस समय जो मायापुर था उसमें बहुत बदलाव है अभी। हाँ, उस समय का मायापुर और अभी का जो मायापुर है, तो चैतन्य महाप्रभु गए। आजकल आप किसी भी आध्यात्मिक स्थान में जाओगे तो ये गैजेट बहुत सरल है जिसमें सब है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में कंप्यूटर है, हर एक के हाथ में क्या कहेंगे कैमरा है, तीनों चीजें इनबिल्ट है, तीनों के कार्य एक ही इंस्ट्रूमेंट कर रहा है। तो जैसे धाम आदि में हम जाते हैं तो नेचुरली फोटोज खींचते रहते हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी गए थे गया की यात्रा में, लेकिन उन्होंने गया को कहां लेके आए? अपने हृदय में लेके आए। और हृदय में लाया तो उन्होंने भक्तों के सामने प्रकट किया। तो हृदय भक्तों के पास खोलना चाहिए, है ना? चैतन्य महाप्रभु अंतरंग भक्तों के पास जो बहुत फेथफुल है, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों को कहने लगे। जैसे उन्होंने भगवान के चरणों का स्मरण हो आया कि एक पद कृष्ण ने गया में एक पद रखे अपने, उसका स्मरण करने मात्र से वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं, पाद पद्म तीर्थेर लयते प्रभु नाम अजरे चरये तुई कमल नया। कहते कि जैसे ही पाद तीर्थ का जैसे नाम लिया वैसे वो रोना शुरू किए, शेष प्रभु है लेना बड़ा असंभव, कृष्ण बलि कांदते लागिला बहुत। अंत में बहुत रोते रोते शांत हो गए और फिर बारंबार फिर से रोने लगे। इस प्रकार से वो सारा स्थान उनके आंसुओं से भर गया था, उनके शरीर में रोमांच आदि कंपन हो रहा था और सारे भक्तों ने देखा कि ये कृष्ण प्रेम का क्रंदन है। कृष्ण प्रेम से व्यक्ति जब भर उठता है तो कृष्ण के अलावा रोने के बजाय उसके पास एक प्रकार से कोई कार्य नहीं होता है। नयनों से कृष्ण के प्रति प्रेम की धारा वो आंसू नहीं है, वो क्या है? कृष्ण के प्रति इतना अधिक उनके हृदय में प्रेम है वो आंसुओं से बाहर टपक रहा था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो वास्तव में आंसू नहीं थे, वो गंगा बह रही थी। कहां से? आंखों से। गंगा तो वैसे चरणों से बह रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम के विरह में चैतन्य महाप्रभु के आंखों से गंगा रूपी जो धारा है वो बह रही थी और सबने इस रूप को जब देखा तो सब लोग चमत्कारित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था अपने जीवन में और सोचा कि ये जो निमाय पंडित है इसके ऊपर जरूर कृष्ण का अनुग्रह हो गया है, क्योंकि जिसके ऊपर कृष्ण का अनुग्रह कृष्ण की महती कृपा होती है वही व्यक्ति वास्तव में कृष्ण के लिए रो सकता है। इस प्रकार से ऐसे निमाय पंडित जब बाह्य दशा में आ गए चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने कहा, एक भक्त का हाथ पकड़ा और कहा, हे मेरे प्रिय बंधु आप घर जाओ वापस, हम सब फिर से कल मिलेंगे। तो सब सहित निवृत एक मोर दुख सकल करीब निवेदन, उन्होंने कहा आप सब घर जाओ, अभी रात्रि हो गई है और कल एकांत स्थान में मैं आप सबसे मिलना चाहता हूं। हाँ, और वहां रमाई पंडित थे श्रीवास ठाकुर के भ्राता या भाई, उनको कहा कि आप सदाशिव और मुरारी को साथ लेकर आओ। तो इस प्रकार से हम शायद कल यहां तक हमने वर्णन किया था, तो इसको आपको पीछे ले जा रहा था, मैं कहां ले जा रहा था आपको, थोड़ा सा वापस। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, अभी उनका नाम चैतन्य महाप्रभु नहीं है, अभी उनके कितने नाम है, निमाय, गौरांगा और विश्वंबर। तो नवद्वीप की लीला में चैतन्य महाप्रभु के तीन प्रमुख नाम है। तो विश्वंबर नाम का अत्यधिक उपयोग तब होने लगा जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आकर कृष्ण के प्रति आपके अपने प्रेम की भावना को प्रकट करने लगे, और जब वो अपना विद्या विलास में रममान थे तो उनका उनका विशेष नाम था निमाय पंडित। क्या नाम था, जोर से,
निमाय पंडित।
तो निमाय पंडित, और जैसे वो छोटे थे पौगंड आदि आयु में थे तो उनको गौर हरि बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जोर से, और ऐसे गौर हरि का और भी एक दूसरा नाम था गौरांग के नाम से उनको उनकी छोटी आयु में या बचपन में पुकारा जाता था। तो ऐसे निमाय पंडित बिल्कुल घर में उस रात्रि में मग्न रहे कृष्ण भावना में, लेकिन उनकी जो माता है वो दुखी थी, सुखी नहीं थी। क्या थी, जब बच्चा भक्त बनने लगता है कुछ वैराग्य के चिन्ह प्रकट करने लगता है तो सबसे अधिक कष्ट किसे होने लगता है, मां को। इसलिए कष्ट होने लगता है क्योंकि हम सबको भय है, और भय उस चीज से होता है कि जब कुछ चीज हमसे दूर ना चली जाए। जैसे शास्त्र में एक श्लोक आता है, रूपे जराया भयम, जो बहुत सुंदर है उसके मन में हमेशा चलता रहता है बुढ़ापा ना आ जाए, एक बाल सफेद ना हो जाए, थोड़ी सी झुर्रिया ना आ जाए चेहरे पर, कुछ बुढ़ापे का एक चिन्ह नहीं आना चाहिए जिसके पास बहुत सौंदर्य है। दैन्य बले, वो कहते कि जिसके पास बल है उसको भी भय रहता है कि उससे अधिक बलवान कोई हो सकता है। शास्त्रे वादी भयम, जो शास्त्रों में बहुत विद्वान है उसको हमेशा डर लगा रहता है, मुझसे भी दूसरा कोई विद्वान नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जिसके पास धन है उसे भी भय लगा रहता है कि यह धन मुझसे चले ना जाए। तो उसी प्रकार से जिनके पास पुत्र परिजन पत्नी संपदा है उनको भी भय लगा रहता है कि ये सब मुझसे बिछड़ ना जाए या दूर ना चले जाए। तो सची माता के पास एक लौते पुत्र थे, कौन थे वो, निमाय पंडित। उनको भय था कि ये चला जा सकता है, और देखा कि वो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते हुए क्रंदन कर रहा है, और जितना अधिक कृष्ण कृष्ण बोलते थे उतना अधिक उनका प्रेम अधिक बढ़ने लगता था। जैसे प्रभुपाद को प्रभुपाद को पूछा हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण करने का अंतिम रिजल्ट क्या है, प्रभुपाद ने कहा मोर हरे कृष्ण मंत्र, और अधिक हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण होना है, यह हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या है, फल है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा समय सच्ची माता को लगा, और वैसे ही सब जगह ये न्यूज़ फैलने लगी धीरे धीरे कि ये जो निमाई है ये वैष्णव बन गया है। क्या बन गया है? भक्त बन गया है। तो सच्ची माता तो दुखी थे, और इन्होंने उन भक्तों को कहा था कि एकांत में मिलना है। तो एकांत किसका स्थान था? शुक्लांबर ब्रह्मचारी का। मैं सोच रहा था कि महाप्रभु ने नहीं बोला कि किसी डिवोटी के घर में मिलते हैं जहां उसके बहुत बच्चे और सब कुछ वहां मिलते हैं, नहीं, कहां मिल रहा है हमें? शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। और वो गंगा के किनारे कुटिया थी, सिंपल सा घर था, और महाप्रभु दूसरे दिन तैयार हो गए जाने के लिए। तो नवदीप के जो भक्त थे वो सारे लोग, सारे जो प्रमुख प्रमुख भक्त है, वो रोज सुबह अपने जो विग्रह है कृष्ण के विग्रह, उनकी पूजा करने के लिए पुष्प चयन करते थे, फ्लावर्स लाने के लिए जाते थे, कुंद पुष्प, जैस्मिन फ्लावर्स। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो सारे भक्त है वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में जाया करते थे पुष्प चयन करने के लिए। तो उसमें अलग अलग भक्त आते थे सब स्थानों से, और हर एक के हाथ में एक एक टोकरी था जिसमें वो फूल चयन करते थे। गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, गोपीनाथ, रामाई, और ऐसे कई सारे भक्त, श्रीमान पंडित आदि, और वहां जाकर एक दूसरे का संगी उन्हें प्राप्त होता था। तो ऐसे स्थान में ये जो रामाई पंडित है या श्रीमान पंडित है वो सुबह सुबह गए, क्योंकि ये एक दिन पहले रात्रि में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, मतलब रात्रि में मिले थे, और उन्होंने कहा था कि कल हमारे पास आओ। तो ये जैसे फूल चयन करने के लिए गए उनके आंगन में, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो जो वृक्ष था कुंद फूलों का वृक्ष, वो वास्तव में कुंद रूपे किवा कल्प धरो अवतार। तो वो कहते हैं कि वो कुंद पुष्प का जो वृक्ष है वो सर्वसाधारण नहीं था, वो कल्प वृक्ष था। और हर रोज जितने भी भक्त हैं, चाहे जितनी मर्जी फूलों का चयन करें, उसमें से कभी भी एक फूल कम नहीं होता था। और ये जो श्रीमान पंडित है ये बहुत हंसते हुए आ रहे थे आज। तो सारे भक्तों ने सोचा, अरे आज बहुत हंसते हुए आ रहे हैं, क्या बात है। जैसे कभी कभी हम भक्तों को देखते हैं तो कई बार हम बहुत हंसते रहते, खुश रहते, हम सोचते कि क्या आज क्या है, कुछ विशेष है। तो वैसे ही श्रीमान पंडित को उन भक्तों ने पूछा, श्रीवास ठाकुर, गदाधर आदि ने, तो कि हे पंडित आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, क्या सीक्रेट है आपका इतना खुश होने का, या इतना आपके चेहरे पर हंसी है। तो श्रीमान पंडित कहते हैं कि मैं आपको रहस्य बताऊंगा, वो ऐसी अद्भुत कथा है जिसके बारे में बताऊंगा कि मैं आज क्यों खुश हूं इतना। तो उन्होंने कहा, परम अद्भुत कथा महा असंभव, निमाई पंडित है ला परम वैष्णव। तो उन्होंने कहा यह अद्भुत बात है नवद्वीप में, ये जो निमाई पंडित है जो बहुत उदंड था वो आज क्या बन गया है, वैष्णव बन गया है। निमाई पंडित है ना परम वैष्णव, ऐसा वैसा वैष्णव नहीं, कैसा, परम वैष्णव। इसलिए महाप्रभु के लिए जो भी शब्द यूज होते हैं उसमें परम हमेशा यूज होता है, परम करुणामय, परम दयालु। तो ऐसे महाप्रभु चैतन्य है, तो वो परम वैष्णव हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं, मुझे तो अभी तुरंत वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने आज सुबह सुबह हमें मुरारी को, सदाशिव को और कुछ भक्तों को क्या किया है, बुलाया है। किसके घर में बुलाया है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी के। तो जब
श्रीमान पंडित ने कहा कि मैं वहां जाना है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी फूल तोड़े, तो सबसे अधिक आनंद श्रीवास ठाकुर को हो रहा था, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ऐसे ग्रस्त रिवोडित है जो अपने अन्य तीन जो भाई हैं उनके साथ निवास करके निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर श्रीमान पंडित वहां से आनंदित हरि ध्वनि का उच्चारण करते हुए जाते हैं और श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, हमारा जो है जो गोत्र है उसका वर्धन हो रहा है, मतलब डिवोटीज की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस प्रकार से श्रीराम पंडित या श्रीमान पंडित वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से गदाधर पंडित सुन रहे थे, सारे पंडित ही थे, कौन सुन रहे थे, गदाधर। तो गदाधर ने जैसे ही सुना तो गदाधर को रहा नहीं गया, उनको लगा कि मुझे इनवाइट नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, क्या बोलने वाले हैं निवाय पंडित, क्या बोलने वाला है वो सुनने के लिए मैं वहां जाऊंगा। तो गदाधर चुपके से वहां से भाग के चले जाते हैं और जाकर सबसे पहले शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जाकर एक कोने में छुप जाते हैं और फिर बाकी सारे भक्त आने लगते हैं वहां। और जब सारे भक्त आए तो सारे भक्त मिलकर इंतजार कर रहे थे कि कब ये निवाय पंडित आएगा, कब आएगा। तो साथ सबके जो आंखें हैं दरवाजे की ओर थी, तो ऐसे जब देख रहे थे तो वहां उन्मत्त पागल हाथी के समान, क्या वर्णन करते हैं कि हाथी के समान उन्मत्त वो चलते हुए आ रहे थे और उन्होंने कृष्ण प्रेम की मदिरा का एक प्रकार से पान किया है, वैसे निवाय पंडित आए सब भक्तों के समक्ष। और आते ही वो उनको कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे थे, वो आते किसी से उन्होंने बात नहीं की और आते ही बैठ गए और बैठते एक श्लोक का उच्चारण करने लगे। वो कहने लगे, पायलो ईश्वर मोरा को न दिखे गेला, एतवली स्तंभ को ले करेला पड़ेला। तो वो कहने लगे कि पायलो ईश्वर मोरे कौन दिखे गेला, कि मैंने कृष्ण की प्राप्ति की थी, भगवान को मैंने देखा था, कृष्ण को उनको देखकर अभी वो कहां चले गए हैं, मुझसे वो दूर चले गए हैं, ये सोचते हुए इतने भावावेश में आ गए कि वह घर का एक स्तंभ पिलर होता है ना, पिलर था उसको पकड़ा इतना जोर से कि पिलर भी टूट के नीचे उनके शरीर पर गिर पड़ा। तो ऐसे जब वो गिर पड़े, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भांगिला ग्रह स्तंभ प्रभु रावेशे कोथा कृष्ण बलिया पड़िला मुक्त केशे। तो वो स्तंभ के साथ गिर पड़े टूटकर और उनके सारे बाल खुल गए थे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के भावों का प्रदर्शन करते हुए मूर्छित गिर पड़े और ये जैसे सबने देखा तो अंदर जोर से गिरने की आवाज आई और अंदर कौन गिर गए होंगे, गदाधर पंडित। केवल महाप्रभु के इस कृष्ण विरह से उन्मत्त श्लोक को जैसे सुना और महाप्रभु का क्रंदन सुना कृष्ण के विरह या वियोग में, गदाधर पंडित जहां छुपके थे वहां जोर से गिर पड़े और फिर वो अकेले ही नहीं गिरे, जितने भी भक्त वहां खड़े थे वो सारे भी क्या हुए, गिरने लगे कृष्ण प्रेम में महाप्रभु को देखने मात्र से। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ये दो तीन चीजें बहुत है, एक तो भक्त लोग हमेशा रोते हैं, दूसरा हमेशा प्रसाद पाते हैं, हमेशा नाचते हैं और हमेशा क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो गदाधर पंडित की जोर से आवाज को जब सुना तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में आ गए
अपने नॉर्मल इसमें आ गए, सिचुएशन में आ गए और उन्होंने पूछा, बताइए अंदर कौन, अंदर कौन है? तो जैसे ऐसे महाप्रभु ने पूछा तो वहां शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहते हैं, प्रभु बोले कौन जन ग्रह भीतर, ब्रह्मचारी बोले ना तो मार गदादर। तो उन्होंने कहा अंदर कौन निमोटी है? तो ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहते हैं, प्रभु आपका गदादर। किसका गदादर? तुम्हारा गदादर। तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं वो ऐसे वैसे नहीं लिखे हैं, हर एक शब्द महाप्रभु के प्रति या महाप्रभु का उनके भक्तों के प्रति कितना प्रेम का भावना है उसको प्रदर्शित किया है। महाप्रभु को शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहते कि तुम्हार गदादर, आपके गदादर अंदर है। तो गदादर को लाया गया, तब सोचो गदादर कितने शर्म के मारे लज्जित हो गए होंगे। गदादर आए चलते चलते अंदर, उनका माथा नीचे था और आंखों से सारे अश्रुपात हो रहा था, आंसुओं की धारा बहते जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु या निवाई पंडित के सामने खड़े होकर वो रोते जा रहे थे। और जैसे गदादर को देखा तो ये गदादर और महाप्रभु बचपन से बहुत क्लोज है, इसलिए कहते गदाई गौरांग जाय जानवा जीवन। हम भक्ति रोड ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि गदाई गौरांग, ये गौरांग के साथ कौन रहते हैं हमेशा? गदाई या गदादर रहते हैं, उनकी जय हो। तो ऐसे गदादर को जब देखा तो निमाय पंडित कहते गदादर तुम परम भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं अपने बाल्यकाल से, बचपन से ही तुम्हारा जो मति है दृढ़ मति कृष्ण में है और मेरा जो जीवन है वो मैंने विफल गवा दिया है भौतिक विद्या को अर्जन करने के लिए। तो इस प्रकार का विनम्रता का भाव निमाय पंडित प्रदर्शित कर रहे थे। और ये बोलकर कौन गिर पड़े होंगे अभी? ये बोलकर महाप्रभु फिर से गिर पड़े और फिर महाप्रभु उठते हैं, हर एक भक्त के गले में गला डालते हैं, अपना हाथ डालते हैं और फिर से रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और वास्तव में यही परफेक्शन है आध्यात्मिक जीवन का कि किससे विरह होना चाहिए? हमें कृष्ण से विरह होना चाहिए। कृष्ण के, कृष्ण से संबंधित किसी चीज से विरह हो रहा है इसका मतलब है हम कृष्ण भावना में अग्रसर हो रहे हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं इवन प्रसाद से विरह हो रहा है, तो भी समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद शुरुआत के दिनों में प्रसाद बनाकर भक्तों को खिलाते थे तो भक्त लोगों को विरह होता था। भक्त लोग इंतजार करते थे जब प्रभुपाद के पहले शिष्य थे कित, कित का नाम, कित एक युवक था जिनका नाम कीर्तनानंद पड़ा। प्रभुपाद दीक्षा के समय कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो कीचनानंद रखना चाहिए था, कीचन में जिसको आनंद आता है ऐसा कीचनानंद। तो एक कीचनानंद या कीर्तनानंद हमेशा कुकिंग के लिए प्रभुपाद के साथ होते थे और डिवोटीज बाहर जो छोटा सा हॉल था स्टोर फ्रंट जो न्यूयॉर्क में पहला, तो वहां वेट करते रहते थे, एक आवाज का इंतजार करते थे। कौन सी आवाज का? छोक। जैसे हम एक टेंपल में गए थे इस्कॉन के ओडिशा में, वहां जब प्रसाद होता है तो उससे पहले उन्होंने घंटा रखा है बड़ा सा प्रसाद हॉल में। प्रसाद के समय में जोर जोर से एक भक्त की सेवा लगाई है, वो क्या करेगा? घंटा बजाएगा। जैसे स्कूल का घंटा बजता है ना, घंटी बजती है, तो वैसे ही जैसे घंटी की आवाज आती है सारे डिवोटीज ब्रह्मचारी आश्रम से, गेस्ट हाउस से, टेंपल हॉल से, जहां मर्जी ऑफिसेस है, सब एक जगह पहुंच जाते हैं महामिलन। हाँ, प्रसाद हॉल में सबका महामिलन होता है। तो उसी प्रकार से ये भक्त लोग भी इंतजार करते थे कि कब छोक का आवाज आएगा किचन में, तो सब लोग जोर से हरि बोल बोलकर पहुंच जाते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये एक प्रकार का कृष्ण के प्रति अनुराग है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हाँ, ये जो तीव्र प्रेम की भावना प्रकट कर रहे थे और रोते हुए कह रहे थे, प्रभु बोले मोर दुख करह खंडन, आने देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन। तो उन्होंने कहा, हे डिवोटीज, आप ही मेरे दुख को क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, लेकिन मुझे कौन चाहिए, आने देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन, मुझे आप सब लाके दे दो, नंद महाराज के पुत्र को दे दो। वो नंद महाराज के पुत्र के विरह में मैं जल रहा हूं, वियोग में मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं और सब भक्त कहते हैं कि वास्तव में ये निमाय पंडित अभी पूर्ण रूप से चेंज हो गया है, पूर्ण रूप से बदल गया है। तो कुछ भक्त कहने लगे कि वास्तव में ये निमाय पंडित सारे जगत को भगवान को प्रकाशित करेगा। कोई कहने लगा कि ये निमाय पंडित आगे चलकर सारे नास्तिकों का दमन करेगा, या कोई कहने लगा कि ये वास्तव में जो भी व्यक्ति इसका एसोसिएशन करेगा वो व्यक्ति इसी के समान कृष्ण के लिए क्या करेगा, क्रंदन करेगा, कृष्ण के लिए रोएगा। और कोई कहने लगा कि वास्तव में ईश्वरपुरी की जो कृपा है इस निमाय पंडित के ऊपर हो गई है। तो इस प्रकार से दिन रात चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोया करते थे। कभी कभी जब पूरी रात्रि होती थी तो वो कहते थे कि अभी दिन चल रहा है क्या, भक्त कहते थे नहीं अभी क्या है, रात्रि है। और जब दिन होता था तो महाप्रभु कहते थे रात्रि कब खत्म होगी, भक्त कहते थे रात्रि कभी खत्म हो गई है, अभी क्या चल रहा है, दिन चल रहा है। तो मतलब दिवानिशी दिन हो या रात्रि हो, इतने अधिक कृष्ण में मग्न हो गए थे कि हर एक भक्त आश्चर्य कर रहा था। तो हर एक व्यक्ति जानना चाह रहा था कि किस प्रकार से ये जो निमाय पंडित है इतना अधिक कृष्ण से वियोग प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से वियोग प्रकट कर रहे थे, और एक दिन फिर क्या करते हैं वो, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो निमाय पंडित गया चले गए थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना छोड़ दिया था, बहुत दिनों की छुट्टियां थी स्कूल को, और अभी वापस आने के बाद उनके सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए, निमाय पंडित हमें फिर से पढ़ाए। तो निमाय पंडित एक दिन उनके जो टीचर है, शिक्षक है, गंगादास पंडित के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, गंगादास उनका आलिंगन करते हैं और उनको कहते हैं कि हे निमाय, कब तक ये सारे स्टूडेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे अलावा किसी और शिक्षक से पढ़ना नहीं चाहते, इवन ब्रह्मा आकर भी इनकी किताबें खोलेंगे तभी भी अपनी किताबें खोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा गंगादास निमाय पंडित को कह रहे थे। तो निमाय पंडित ने कहा, उन्होंने कहा कल से ही क्या करो, इन सब बालकों को, इन सब तुम्हारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करो। तो उनको प्रणाम करके निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान को अपना उन्होंने छोटा सा स्कूल शुरू किया था वो स्थान था मुकुंद संजय का जो घर है, संजय मुकुंद इधर है ना, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो ये संजय मुकुंद ये एक ही डिवोटी का नाम है। तो मैं भी पहले सोचता था संजय एक अलग डिवोटी होगा और मुकुंद एक अलग होगा, तो मुकुंद दूसरे एक अलग डिवोटी है। तो ये मुकुंद संजय के घर में जाते हैं जहां चंडी मंडप में निमाय पंडित सारे बालकों को पढ़ा करते थे, और उनके पास जाकर ये संजय मुकुंद के जो एक पुत्र थे पुरुषोत्तम, उनको देखकर महाप्रभु रोने लगते हैं, उनको अपने पास लेते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और उनको अपने आंसुओं से स्नान करवा देते हैं। और ये देखकर सबको लगता है कि ये निमाय पंडित पूरे दिन या पूरी रात्रि में कुछ और करता ही नहीं है, क्या करता है, केवल कृष्ण के लिए रोता है। तो इस प्रकार से हर एक नवद्वीप वासी सोच रहा था कि ये निमाय पंडित में इतना बदलाव कैसे आ गया। तो फिर एक दिन सची माता हाँ निमाई पंडित को कहती है, चैतन्य चरिता में वर्णन आता है इस लीला का, सच्ची माता कहते कि हे निमाय, तुमने जहां जहां भ्रमण किया है उन स्थानों से जो भी धन लेके आए हो वो सब धन तुमने मुझे प्रदान किया है, लेकिन मैं देख रही हूं कि एक जो धन है तुमने मुझे अभी तक दिया नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि कौन सा वो धन है? तो सच्ची माता कहती है कि आप गया में गए थे और गया से कृष्ण प्रेम रूपी रत्न धन आप लेके आ गए हो और आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, इतना अधिक कृपणता क्यों प्रकट कर रहे हो? तो सच्ची माता कहती है कि आप कृपा करके या करुणावश होकर वो जो कृष्ण प्रेम रूपी रत्न है वो मुझे प्रदान करो ताकि मैं भी उस कृष्ण रसामृत में सदैव गोते लगाती रहूंगी या डूबती रहूंगी और उसमें विहार करूंगी। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी स्वयं की माता कृष्ण प्रेम मांग रही है, क्या मांग रही है? कृष्ण प्रेम रूपी धन। तो जब ऐसे मांगा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे जननी, फिर चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, इति तस्य वच श्रुत्वा मातु स्नेहाद् वच तमा वैष्णवानुग्रहाद् माता स्तव तत् संभविष्यति। तो उन्होंने कहा कि हे मेरी माता सची देवी, कि ये जो कृष्ण प्रेम रूपी रत्न है या धन है वो प्राप्त होना बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में तुम मुझसे मांग रही हो ये ऐसा धन है जो इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ है। इस संसार की हर एक वस्तु व्यक्ति के जीवन में सरलता से आ सकती है, लेकिन भगवत भक्ति व्यक्ति के जीवन में सरलता से नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सची माता को कहते, तुमने भागवतम नहीं सुना? भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण हर एक व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे शुद्ध भक्ति की कामना करता है तो उसको कहते वेट करो, इंतजार करो, सरलता से अपनी प्रेमा भक्ति भगवान कृष्ण भी प्रदान नहीं करते। क्यों प्रदान नहीं करते? क्योंकि ऐसे प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान उस भक्त के पूर्णतया वश में हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि हे जननी, तुम्हें वास्तव में प्रेम प्राप्ति की आकांक्षा हृदय में है, इच्छा है, तो उसके लिए एक ही उपाय है और वो उपाय क्या है? सत्संग, भक्तों का संग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यही बात चैतन्य महाप्रभु सची माता को कह रहे हैं। उनको कहा कि जो वैष्णवगण भगवान से प्रीति रखते हैं, ऐसे महान कृष्ण प्रेमी भक्तों का जब सहचर्य हमें सत्संग प्राप्त होता है तो उससे स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रीति का लाभ हमें मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव प्रसादे प्रेम पावे माता तुम्हें निश्चह जानिय कथा कही नाम आमी। तो उन्होंने कहा कि वैष्णव की कृपा से ही हे मेरे माता सची, भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो प्राप्त हो सकती है। तो सची माता कहती है कि हे निवाय, मैं तो देख रही हूं कि तुम तो सबसे अधिक कृष्ण प्रेम में क्या हो चुके हो, पागल हो चुके हो, मग्न हो चुके हो। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वो कृष्ण प्रेम मुझे प्रदान करो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि हे जननी, कि मेरे हृदय में मेरे हृदय मंदिर में कृष्ण के प्रति प्रेम का अंकुर भी उदित नहीं हुआ। क्या कहा उन्होंने? कृष्ण के लिए मेरे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। और आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रेम सर्वाधिक किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। तो ऐसे सची माता को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और कहा कि ये महादुर्लभ प्रेम वास्तव मुझ में नहीं है, लेकिन आप सोच रही हो, इस प्रकार से सोच रही हो, तो मैं क्या करूंगा? ये आशा रखूंगा कि एक दिन ये कृष्ण का जो दिव्य दुर्लभ प्रेम है वो मैं प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सची माता के चरणों में गिरकर कहते हैं कि ये सची माता तुम कृष्ण से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे महान भक्तों का संग प्राप्त हो और ताकि उनके संग से जो श्री हरि कृष्ण है उनके प्रति किंचित थोड़ा भी इस जीवन में मैं प्रेम उदित कर सकूं। तो इस प्रकार से अपनी माता से वो प्रार्थना करने के लिए कहते हैं सच्ची माता को। और कवि कर्णपुर इस लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं केवल चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को भी जो कृष्ण प्रेम है वो प्रदान किया था। तो ऐसे दो तीन दिन जब बीते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन जब ये गया से वापस आए थे तब से इनका मन घर के कार्य में नहीं लग रहा था। जैसे कई बार डिवोटीज नए नए टेम्पल आने लगते हैं, जप करने लगते हैं, तुरंत ही मंगल आरती आना शुरू कर देते हैं, पूरा प्रोग्राम और सब कुछ इतना फास्ट होता है शुरुआत में तो घर वालों को टेंशन आने लगता है। और बल्कि हर एक व्यक्ति बोलने लगता है कि प्रभु ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी घर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि मंदिर में भक्तों के संग में रहो, यहाँ ही घूमता रहो, यहाँ ही परिक्रमा करता रहो। तो महाप्रभु चैतन्य जब गया से वापस आए तो उनको भी घर का कार्य करना ये अच्छा नहीं लग रहा था, उनका घर के कार्य में मन नहीं लग रहा था और सदैव सोचते थे कि एकांत में जाकर बैठो और कृष्ण का चिंतन करो। तो एक समय ऐसे ही घर के बाहर एकांत में जब चैतन्य महाप्रभु घर के आंगन में ही थोड़ा दूर जाकर बैठे और बैठे तो कृष्ण का चिंतन करने लगे। क्योंकि श्रवणम का फल तभी है जब हम क्या करें, कीर्तन करें और मनन करें जो भी हमने सुना है। तो जब महाप्रभु ऐसे बैठे बाहर और कृष्ण का चिंतन करने लगे कृष्ण के अलग अलग कार्यकलापों का, तो अचानक उनके आंसुओं से आश्रम की धारा प्रवाहित होने लगी और ये रात्रि का समय हो गया था। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करती थी उस भावना से एक श्लोक का उच्चारण किया श्रीमद् भागवतम से। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण करने लगे। वो श्लोक इस प्रकार से है, अक्षनावतां फलमिदं न परं विदामा सख्या पशु ननु विवेशयत वर्ययश वक्त्रं रजेश सुतयोरनवेनुजुष्टं यर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। तो ये श्लोक श्रीमती राधिका कृष्ण के वियोग में वर्णन कर रही है, जिसमें श्रीमती राधा रानी कह रही है हे सखियों, जो नंद महाराज के दोनों पुत्रों का अपने आंखों से दर्शन करती है वो जो श्री है वास्तव में क्या है, इस संसार में सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो ही ये दो मित्रों से घिरकर तथा गवों को अपने आगे आगे करके जंगल में प्रवेश करते हैं तो वे अपने मुख में अपनी वंशियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरे चितवन से देखते हैं। जो आंखों वाले हैं उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। क्या कहा श्रीमती राधा रानी ने कि वास्तव में जब ये कृष्ण और बलराम इतने सुंदर हैं और वो जब चलते हैं वन में जाने के लिए अपने अधरों पर बांसुरी पकड़ते हैं तो उनको देखना ही सर्वोच्च फल है इन आंखों के लिए। तो ये श्लोक, ये भावना, ये लीला जब उन्होंने स्मरण की, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे स्मरण करते ही जोर जोर से रोने लगे और उच्चारण करके गिर पड़ते हैं। और सची माता अंदर कुकिंग कर रहे थे। सची माता जैसे अपने बालक निमाई पंडित का इस प्रकार से रोना सुनती है तो दौड़ते हुए आती है और दौड़ते हुए आते और कहते कि हे निमाय, आपको क्या हो गया, क्यों आप मूर्छित हो गए हो, क्यों कृष्ण के लिए रो रहे हो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल मूर्छित हो गए और वो उठ भी नहीं पा रहे थे। सची माता डर गई उनको लगा कि मेरा पुत्र इस जगत से चला गया, तो जोर जोर से रोते हुए सची माता कहां पहुंचती है? श्रीवास ठाकुर के घर। अब नवदीप माया को जाएंगे तो सची माता का योग पीठ और श्रीवास आंगन क्या है, बहुत नजदीक है। तो सची माता दौड़ते हुए श्रीवास आंगन में श्रीवास पंडित के पास जाते और कहते हैं, श्रीवास शीघ्र चलो मेरा पुत्र रो रहा है और बहुत दुखी थे। तो श्रीवास पंडित को बहुत तीव्रता से पकड़ कर लाए। श्रीवास पंडित जैसे दौड़ते हुए आए तो उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु को दोनों अपनी दोनों बाहों में या हाथों में उनको उठा लिया और कहा, हे विश्वंभर क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो? कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम रोना छोड़ दो। तो ऐसे जब बोला तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही फिर से वही श्लोक जोर से बोलने लगे और बोलकर फिर से कृष्ण प्रेम के सारे लक्षणों को प्रकट करने लगे और वो कहने लगे कि वास्तव में ये जो निमाय पंडित है इसको कोई बीमारी नहीं हो गई है, बल्कि नवदीप के लोगों को लगता था कि इसको वायु रोग के कारण या ऐसी बातें करता रहता है या कुछ कुछ बड़बड़ाता है या कृष्ण के लिए रोता रहता है, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने देखा कि वास्तव में कोई भौतिक रोग नहीं है, इसको कृष्ण प्रेम का रोग हो गया है जिनके कारण ये निरंतर रोता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हे सची देवी, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वास्तव में ये जो रोग इनको हुआ है ना, ये मैं चाहता हूं कि मुझे भी ऐसी बीमारी हो जाए ताकि मैं क्या करूं अपने जीवन में, कृष्ण के लिए क्रंदन करूं, कृष्ण के लिए पागल हो जाऊं। इस प्रकार से सची माता को सांत्वना देते हैं और ऐसे चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि सची माता हमेशा सोचते थे कि ये तो बहुत वैराग्य के भाव प्रकट कर रहा है, तो सची माता हमेशा कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि मैं अनाथ नहीं हूं, हे कृष्ण मुझे एक ही वर चाहिए। तो कृष्ण कहते, हो सची क्या वर चाहिए आपको? तो सची माता कहती है, सुस्तचित्ते ग्रहे रहो मोर विश्वंभर, ये ठीक हो जाए और घर में ही रहे, अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, इसका मन लगे इसमें ताकि इसको छोड़कर ना चला जाए। इस प्रकार से भगवान से निरंतर प्रार्थना करते थे और फिर चैतन्य महाप्रभु का मन वास्तव में किसी भी ग्रह कार्य में नहीं लग रहा था। इतना भी नहीं, वो टीचर थे, शिक्षक थे, अभी वो सारे विद्यार्थी वेट करते रहते थे कि कब हमारे टीचर निमाय पंडित आएंगे और हमें शिक्षा प्रदान करेंगे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो विश्वंभर है, सुबह सुबह गंगा स्नान करने के बाद अपने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चल पड़े। और ये कहाँ पढ़ाते थे? कभी कभी मुकुंद संजय के घर में पढ़ाते थे या कभी कभी गंगा के किनारे सारे स्टूडेंट्स को एकत्रित करके बीच में बैठकर सबको पढ़ाते थे। तो ऐसे जब पढ़ाने के लिए गए तो सारे बालकों को देखकर इनके हृदय में कृष्ण के प्रति फिर से पागलपन जग गया और फिर से कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रोने लगे और उन बालकों से वो कहने लगे कि हे बालक, आप क्या करो, कृष्ण कृष्ण कहो, क्या कहो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से वो जहां भी बालकों को पढ़ाने के लिए भी जाते थे और वो जनरली न्याय शास्त्र आदि पढ़ाते थे, तीन चीजें, एक तो व्याकरण पढ़ाते थे और दूसरा सूत्र टीका और वृत्ति, तो ये तीन चीजें उनको पढ़ाया करते थे। तो लेकिन जैसे इन चीजों को एक्सप्लेन किया करते, उनका अर्थ बताते, तो हर अर्थ का जो संबंध है वो कृष्ण से करते और कृष्ण से करकर वो कृष्ण के बारे में शिक्षा प्रदान करते। जैसे गौर गोविंद महाराज थे, वो भी टीचर थे, तो उनके जीवन में आता है कि वो जब पढ़ाया करते थे कुछ अपने स्कूल में, तो हमेशा
कुछ बच्चों के नाम स्कूल के जो पाठ्यक्रम था उसमें होंगे कुछ एग्जांपल्स, तो हमेशा राम कृष्ण मधुसूदन ऐसे भगवान के नाम ऐड करते थे और बच्चों को भगवान के बारे में पढ़ाने लगते थे। कभी कभी उनके जो प्राध्यापक या प्रिंसिपल है वो आकर गेट में खड़े हो जाते थे कि ये क्या पढ़ा रहा है, देखते कि ये पूरा भागवत पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उनको कहते थे गौर गोविंद आप थोड़ा ठीक से पढ़ाया करो, हाँ जो स्कूल का सिलेबस है वो क्या करो ठीक से पढ़ाओ। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब स्कूल इनके स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो सदैव भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान करते थे। और उस दिन उन्होंने कहा प्रभु बोले सर्व काल सत्य कृष्ण नाम सर्व शास्त्र कृष्णमय नामो लय आन। उन्होंने कहा कि जो सारे शास्त्र है वो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, सारे शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा दी गई है, इवन जो शिव है ब्रह्मा है ये सारे भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जिन शास्त्रों में भगवान की महिमा का गुणगान किया हुआ है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उन बालकों को पढ़ाते जा रहे थे निमाय पंडित के रूप में। और उन्होंने कहा जो शिक्षक होकर भी कृष्ण के चरणों को छोड़कर दूसरी शिक्षा प्रदान करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में सबका शत्रु है, वो व्यक्ति वास्तव में दूसरों का जीवन में अहित ही ला रहा है और वो व्यक्ति स्वयं ही अपना जो जन्म है वो व्यर्थ गवा रहा है। इसलिए शिक्षक वही होना चाहिए जो व्यक्ति क्या करे उस विद्यार्थियों को कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति का जो दान है या प्रेम भक्ति की जो शिक्षा है वो प्रदान करे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उन सारे बालकों को कहने लगे कि वास्तव में कृष्ण सारे जगत के सार है या कृष्ण सर्वाधिक दयालु है, इसलिए हे विद्यार्थियों आप क्या करो निरंतर कृष्ण कृष्ण कहो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित के रूप में भी जब इस प्रकार की शिक्षा दे रहे थे और अचानक उन्होंने बाह्य दशा में आकर बच्चों को पूछते हैं स्टूडेंट्स को कि कुछ समझ में आ गया आपको जो मैं बोल रहा हूं, तो जितने वो स्टूडेंट्स हुआ करते थे कहते हमें कुछ समझ में नहीं आता, कृष्ण के अलावा और कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए हम आपसे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप अभी अभी गया से वापस आ गए हो और वापस आकर केवल 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 कृष्ण के बारे में बोलते जा रहे हो, कुछ भी व्याख्या आपसे समझना चाहते हैं तो आप कृष्ण कृष्ण कहते हो। तो महाप्रभु कहते ठीक है दोपहर को फिर से क्लास लेंगे उस समय आपको समझाऊंगा, कहते चलो अभी हम स्नान करने के लिए चलते हैं। तो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु उन सबके साथ स्नान करने के लिए जाते हैं और फिर घर में जब वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु का दिनचर्या होता था रोज सुबह गंगा स्नान करना, गंगा स्नान करके आते थे तो तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी को जल दान करना और फिर उनके घर में शालिग्राम विग्रह थे क्षय विष्णु के जो विग्रह थे अधोक्षज विष्णु उनके विग्रह थे छोटे हैं, आज भी आप जाते हो नवद्वीप मायापुर योग पीठ में तो वो छोटे से विग्रह आज भी है दर्शन के लिए, तो उन विग्रहों की वो पूजा करते थे। और फिर सची माता भगवान को अर्पित जो भोजन है जिसके ऊपर तुलसी मंजरी हुआ करते थे ऐसा भोजन का जो थाल चैतन्य महाप्रभु के सामने रखते थे और उनके सामने वो बैठा करते थे और बैठते हुए उनसे बातें करते थे। और जो विष्णु प्रिया जब से गया से वापस आए हैं तब से कभी उनके सामने बैठते रही थे उनको डर लगता था विष्णु प्रिया को, तो विष्णु प्रिया दरवाजे के पीछे खड़े होकर सदा निमाय पंडित को देखा करती थी अपने जो पति है चैतन्य महाप्रभु को। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद दे रहे थे तो तो सची माता ने पूछा, निमाय क्या पढ़ा, कौन सा पुस्तक पढ़ा आपने आज? तो निमाय पंडित या चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा, आज ये ऐसा क्यों पूछ रही मुझे? और पूछा, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया तुमने आज? तो इनका तो कुछ मन ही नहीं था ये सब विषयों पर बात करने के लिए। उनके मन में कौन घूम रहे थे? कृष्ण। जितने आदि कृष्ण ने, जैसे प्रहलाद महाराज है, भागवतम में वर्णन आता है कि वो कहते, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे एक ही ग्रह ने ग्रसित किया है। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं आजकल मेरे जीवन में शनि की दशा चल रही है, इतना डर लगता है, शनि का नाम लेते ही डरने लगते हैं। बल्कि शनि किसके डिवोटी है? कृष्ण के शुद्ध भक्त है। ब्रह्म विवर्त पुराण में शनि के बारे में वर्णन आता है, वहां जब ये गणेश जी का जन्म हुआ शिव और पार्वती के द्वारा, तो शिव जी, पार्वती ने गणेश जी को गोद में अपने लिया और उनको कहा, सब लोग आ रहे थे मिलने, तो शनि भी जाना चाह रहे थे मिलने, तो शनि भी गए वहां अपने भार्या पत्नी के साथ। और शनि जी का जो सर है ऐसे नीचे देख रहे थे, वो कभी ऊंचे ऊपर नहीं देखते थे। क्यों नहीं देख रहे थे किसी की ओर? कि उनकी जो पत्नी है, एक दिन बहुत सज धज के आ गई उनके सामने, का ओ पतिदेव, देखो मैं कितनी सौंदर्यवती हूं, कितनी सुंदर लग रही हो, बताइए मेरा गुणगान करो। शनि ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है, मैं कृष्ण के अलावा किसी को देखता नहीं हूं, किसी का गुणगान नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा, जहां भी तुम्हारी नजर पड़ेगी, पत्नी ने उनको शाप दिया कि तब क्या हो जाएगा उस व्यक्ति के जीवन में, हा हा का। तो शनि जब यहां पहुंचे तो माता पार्वती ने कहा, आप देखो इधर, मेरे पुत्र को देखो। उन्होंने कहा, माता पार्वती, मुझे मत मेरी आंखों को मत ऊपर कराओ, मैं नहीं देखूंगा, नहीं तो कुछ विघ्न हो सकता है। हाँ, तो अलग अलग कथा जाती है शिव जी गणेश जी के बारे में पुराणों में, तो उसमें यह आता है कि वो मना कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत उकसाया, तो उन्होंने अपना शुभ दृष्टिपात डाला। डालते ही वहां गणेश जी का जो सर है, हाँ, वो अलग हो जाता है। फिर वो शिव जी आते हैं और आगे की कार्यकलाप करते हैं। तो हम भी हमारे जीवन में अलग अलग ग्रहों से बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते, मैं बहुत आनंदित हूं। क्या आनंद है मेरा, कि एक ग्रह ने मुझे ग्रसित किया है, और वो ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह। कौन सा? जोर से। प्रहलाद कहते, मैं तो इसी ग्रह से ग्रसित रहना चाहता हूं लाइफ टाइम, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब से गया से आए थे, तब से ये जो ग्रह है उनको ग्रसित कर चुका था, और उनको कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कृष्ण के अलावा कोई को कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तब जैसे उनके मां ने पूछा, बेटा क्या आपने पढ़ा? तो चैतन्य महाप्रभु हंसे, और वो नहीं चाह रहे थे कृष्ण के अलावा कुछ बोलूं या कृष्ण के अलावा कुछ सुनूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु बोले, आज ही पढ़े लाम कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। उन्होंने कहा, आज मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? कृष्ण का नाम वास्तव में इस संसार में सत्य है, कृष्ण के चरण ही इस संसार में शरण लेने योग्य है, कृष्ण ही सारे आध्यात्मिक गुणों से भरे हुए हैं। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्र सेवक जय जय जान। अपनी मां से कहते कि हे माता, कृष्ण के नामों का कीर्तन करना ही सत्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, वही शास्त्र सत्य है जो कृष्ण के नामों का, कृष्ण के भक्ति का प्रतिपादन करता है, और जिसमें, जिस शास्त्र में कृष्ण के नाम रूप गुण उनके भक्तों का वर्णन है, उनके लीलाओं का, उनके कीर्तन आदि का, वही वास्तव में शास्त्र शास्त्र है।
इसके अलावा जिनमें इनका वर्णन नहीं है ऐसे शास्त्र वास्तव में शास्त्र नहीं है, हाँ वो केवल पाखंडी व्यक्तियों की परिकल्पना है या उनका वास्तव में प्रजल्पा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यस्मिन शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तम शास्त्र यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। उन्होंने कहा ऐसे शास्त्रों को व्यक्ति को कदापि नहीं सुनना चाहिए। यस्मिन शास्त्रे पुराण या शास्त्र या पुराण आदि जिसमें हरि भक्ति कृष्ण भक्ति की महिमा को नहीं बताया गया हो उसको ना पढ़ना चाहिए ना सुनना चाहिए, चाहे ब्रह्मा अपने चार मुखों से प्रवचन दे रहा हो। कौन? ब्रह्मा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता को कहा। फिर महाप्रभु ने कहा वास्तव में चंडाल चंडाल नहीं है यदि वो क्या बोलता है अपने मुख से, हरे कृष्णा विप्र विप्र रहे यदि असत पथे चले। और वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है हम वास्तव में यदि वो असत पथ का अनुगमन करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अचानक कपिल देव के भाव में आए। कौन से भाव में? और वो अपनी माता को कौन सी माता समझने लगे? हाँ देवहूति। फिर वो इतने भावावेश में आ गए पूरा भागवतम का प्रवचन देना शुरू किया। उन्होंने कहा वो प्रवचन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप भी ध्यान से सुनिए। हाँ कुछ कुछ चीजें होती है जो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ना हमें समझने के लिए। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु वो प्रवचन देने लगे जो वास्तव में कपिल देव ने अपनी माता को दिया था, क्योंकि देवहूति माता ने कहा कि मेरी जैसी दुर्भाग्यशाली स्त्री इस संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भगवान के रूप में पुत्र है और इतने महान शुद्ध भक्त के रूप में पति है, फिर भी मैं इन दोनों का लाभ नहीं उठा पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास अनियंत्रित इंद्रिया है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस, जिसके कारण देवहूति रोने लगी और उन्होंने कपिल देव को अप्रोच किया। कपिल देव को कहा कि हे पुत्र बताओ मेरे जैसे स्त्री को क्या करना चाहिए। तो कपिल देव भागवतम में तीसरे स्तर में शिक्षा देते हैं और प्रभुपाद ने एक बुक ही कंपाइल किया अलग से, हाँ टीचिंग ऑफ लॉर्ड कपिला। तो वहां चैतन्य महाप्रभु कपिल देव के मूड में आकर कहते हैं, सुना सुना माता कृष्ण भक्ति प्रभाव सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग, कि भक्ति का प्रभाव सुनो और पूर्ण रूपेण कृष्ण में अपना अनुराग आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करो। कृष्ण सेवक र माता कभो नाही नाश काल चक्र डराय देखिया कृष्ण दास। जो वास्तव में कृष्ण भक्त है उनका कभी विनाश नहीं होता और इस भौतिक काल से कभी वो डरते नहीं है। गर्भवास जत दुख जन्म वा मरने कृष्ण र सेवक माता किछु होना जाने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जितने भी ये गर्भवास पुनरपि जनन पुनरपि मरण बारंबार जन्म लेना मरना ये माया के द्वारा दिए गए दुख है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो माया के द्वारा दिए गए जो दुख है उससे प्रभावित नहीं होते। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बताने लगे किस प्रकार से एक जीव पुरुष के वीर्य से स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और वास्तव में जीव कृष्ण का विस्मरण उसके जीवन में अधिक होने के कारण उसको बारंबार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया गर्भ में एक महीने में कितना बड़ा बालक होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने और फिर 7वें महीने का महाप्रभु वर्णन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 7वें महीने में जो बालक है गर्भ के अंदर उसको स्मरण आना शुरू होता है, 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगती है और वो जो 6वें महीने में कुछ खाना आदि पोषण स्वीकार करता है अपनी माता से और 7वें महीने में जैसे स्मरण आता है अपने पूर्व कर्मों का वो सोचता है कैसे मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण इस संसार में कष्ट पा रहा था, और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगता है सातवें महीने में। वो कहता है जो जीव है कि हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, वास्तव में आप मेरे प्राणनाथ हो, और मैं देखता हूं कि मैं देख रहा हूं कि इस दुख से आपके अलावा मुझे कोई और बचा नहीं सकता। तो जो प्रार्थना करता है कि जिसने मुझे बंदी बनाया है वही व्यक्ति मुझे क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करता है चैतन्य महाप्रभु अपने माता को कहते हैं, और एक विशेष प्रार्थना का वर्णन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वो कहते हैं कि वो बालक जो गर्भ में है वो क्या कहता है, जेखाने तुम्हारा ना ही यशेर प्रचार जथा ना ही वैष्णव गनेर अवतार। वो कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण मुझे ऐसे स्थान में जन्म मत दो, कौन से स्थान में, जहां आपके यश का गुणगान नहीं हो रहा है, और जहां आपके भक्त नहीं है, जहां आपके भक्तों का संग नहीं है, ऐसे स्थान में मुझे जन्म मत दो, और जहां आपके प्रीति हेतु फेस्टिवल्स नहीं मनाए जा रहे हो ऐसे स्थान में भी मैं जन्म ग्रहण नहीं करना चाहता, चाहे वो इंद्रलोक हो या ब्रह्मलोक हो या स्वर्गलोक आदि कोई ना हो। इस प्रकार से वो जो प्रार्थना करता है, गर्भवास दुख प्रभु यह मोर स्थान जदि तोर स्मृति मोर रहे सर्वकाल। उन्होंने कहा सबसे अच्छा है कि मुझे माँ के गर्भ में रहने दो, क्योंकि यहाँ एक चीज सबसे अच्छी है, क्या है, कृष्ण का स्मरण। और वो कहता है कि बाहर ऐसे स्थान में मैं जन्म नहीं लेना चाहता जहां आपका स्मरण ना हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को ये सारे उपदेश देते हैं, बहुत सारे एक दो अध्यायों में चैतन्य भागवत में। और फिर चैतन्य महाप्रभु सची माता को कहते हैं कि हे सची माता, है मेरी जननी, तुम वास्तव में अपना हित चाहती हो तो क्या करो, कृष्ण का भजन करो और महान भक्तों का संग करो। मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि, क्या है मेरे पीछे बोलिए, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। बहुत इजी है कि नहीं, कौन बोल सकता है, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। तो उन्होंने कहा दो चीज करो अब मेरी माँ, क्या, मन में कृष्ण का चिंतन करो। इसलिए कृष्ण कहते हैं मन मनहा मत भक्तो, और मुख से क्या बोलो, हरे हरे, जोर से
हरे हरे,
और जोर से
हरे।
चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से कहते हैं मन से कृष्ण का चिंतन करो, मुख से हरे 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 का उच्चारण करो। तो सची माता ये सुनकर इतना अमेजिंग प्रवचन अपने घर में ही निमाय पंडित का इतनी आनंदित होने लगती है। और फिर नवदीप वासी जितने भी थे वो देखते हैं कि ये क्या हो गया है निमाय को, कि ये घर में भी स्कूल में भी नदी में स्नान करने जाता है, सब जगह कृष्ण 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 के अलावा इसको कुछ सोचता नहीं है। तो उनको लगा कि वास्तव में इसके शरीर में कृष्ण अवतरित हो गए हैं, या तो कुछ ऐसे साधुओं के संति के प्रभाव के कारण ये कृष्ण के लिए क्या हो गया है, पागल हो गया है। तो दो ही चीजों से हम पागल हो सकते हैं, भक्तों के संति से कृष्ण के लिए, या कृष्ण के विशेष कृपा से भगवान के लिए पागल हो सकते हैं। तो सब सोचने लगे कि अभी तक तो ये विद्या रस को पान कर रहे थे, लेकिन अभी कृष्ण रस को पी रहे हैं, कौन से रस को, कृष्ण रसायन पिबा। कुलशेखर महाराज कुलशेखर एक ग्रंथ लिखे हैं मुकुंद माला स्तोत्र, प्रभुपाद का फेवरेट था, उसमें बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, तो प्रभुपाद हमेशा उनका उच्चारण करते थे। उसमें से एक था कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यो में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठा विरोधन विधो स्मरण हम कुतस्ते। कि हे कृष्णा अभी मेरा मन आप में लगा है, आपका स्मरण कर पा रहा हो, तो अभी मुझे इस संसार से ले जाओ, अन्यथा जब वृद्धावस्था आएगी तो सब जगह से आवाज आने लगेगी, कंठ घुरघुरायते। एक श्लोक है जिसमें कहा गया है वृद्धावस्था में कंठ से कैसे आवाज आता है, घुर घुर की आवाज आती है। हा? तो कहते उस समय में सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उस समय कैसे आपका स्मरण कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जब अकेले हुआ करते थे, चाहे हारमोनियम हो या वैसे हो, हाँ प्रभुपाद गाते थे, यदि आप उनके रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो। फिर चैतन्य महाप्रभु वास्तव में प्रेम भक्ति के विकार के विशेष लीला प्रकट कर रहे थे। और विशेष रूप से क्यों ऐसा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि दिखाना चाह रहे थे कि कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, पढ़ने लिखने का अंतिम फल क्या है, कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग होना। क्या फल है, कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग। इसलिए जब केशव काश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु ने जब हरा दिया था नवद्वीप में, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था, से विद्यार फल जानी हनि चाय कृष्ण पाद पद्म जदि चित्त वृत्ति लाए। वास्तव में विद्या का फल क्या है कि वो विद्या वो नॉलेज कृष्ण के चरण कमलों में हमारे चित्त को ले जाए, ये वास्तव में विद्या का असली फल है। यदि विद्या नॉलेज जो भौतिक विद्या या जो भी ज्ञान है वो हमारे मन को कृष्ण के चरण कमलों से दूर ले जा रहा है, तो विद्या का वो उचित फल नहीं है, अनुचित है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु विद्यारस में मग्न थे। और एक दिन उन जो छात्रगण है चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने जिज्ञासा की। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जो कलाप व्याकरण है उसमें से एक प्रश्न पूछा, कलाप व्याकरण का जो प्रथम सूत्र है उसके बारे में जिज्ञासा की। तो उन्होंने कहा सिद्ध वर्ण समान माया, इसका तात्पर्य क्या है, एक सूत्र उन्होंने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मतलब उसका मतलब था कि ये जो वर्णमाला है उसमें वो उसके बारे में आप हमें विशेष रूप से समझाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में ये सारे जो वर्ण है वो सारे सिद्ध नारायण है। मतलब उन्होंने ये वर्णमाला के बारे में पूछा अ आ ई, तो इन्होंने कहा ये सारे किसको दर्शाते हैं, कृष्ण को। किसका गुणगान करते हैं सारे शब्द, कृष्ण का। अभी ऐसे उत्तर सुनकर वो जो छात्र है वो परेशान हो गए, क्योंकि महाप्रभु की खासियत क्या थी, कुछ भी कोई बोले कहां कनेक्ट करते थे, कृष्ण से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी बोलो वो आपसे लड़ाई करेंगे, है ना, कुछ होते हैं ऐसे खड़ूस जिनको कहते हैं। आप पूरी विनम्रता से बोलो तो कुछ ना कुछ ढूंढेंगे आपके साथ, क्या करेंगे, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि ये सारे वर्ण यदि आप कह रहे हो नित्य सिद्ध है, तो कैसे ये सारे वर्ण नित्य सिद्ध हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्योंकि उन सारे वर्णों पर कृष्ण ने अपना दृष्टिपात कर लिया है। क्या कर लिया है, दृष्टिपात किया है, जिसके कारण सारे वर्ण नित्य सिद्ध है। अभी वो शिष्य और टेंशन में आ गए। शिष्य कहने लगे, शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या कर, प्रभु बोले सर्वक्षण श्री कृष्ण स्मर। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा पंडित जरा ठीक ठीक से व्याख्या करो। तो उन्होंने कहा आप सब लोग किसका स्मरण करो। तो इस प्रकार से निमाय पंडित गया से वापस, गया की यात्रा उनको एक प्रकार से महंगी पड़ी थी। वो अभी कृष्ण को भूल नहीं पा रहे थे, कृष्ण इतने उनके शरीर में घुस गए थे, वो स्वयं ही कृष्ण है। तो हर समय कृष्ण के संबंध में बोलते थे। तो ये सुनकर सारे उनके स्टूडेंट हंसते हैं और कहा कि हे पंडित तुम कैसी व्याख्या कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सही सही तो बोल रहा हो, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसे ही मैं बोल रहा हूं। तो कहते हमारे समझ में नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु कहते फिर से कल एक और एक एक्स्ट्रा क्लास हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे बच्चों ने सोचा अभी हमें प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी चाहिए, टीचर की। तो वो प्रिंसिपल कौन थे, गंगादास। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षक थे गंगादास। तो ये सारे नवद्वीप के प्राचीन टीचर थे गंगादास, जिनके पास ये सारे स्टूडेंट जाते हैं और कहा कि देखो अभी कितने दिन चले गए हैं, बल्कि अभी 10-15 दिन हो गए आने के बाद भी हमारी क्लास ठीक से नहीं ले रहा है, वो अच्छी तरह से पढ़ाता नहीं है, सारा स्टडीज हमारा बंद हो गया है, जो भी शब्द बोलो सबका अभिप्राय कृष्ण कृष्ण कहते रहता है, किसी का भी अर्थ पूछो तो कहेगा सबका अर्थ क्या है, कृष्ण है। तो अब सारे स्टूडेंट्स गंगादास को ये कंप्लेंट कर रहे थे, तो की करेबा आमे सबह बोला पंडित, उन बच्चों ने कहा है पंडित गंगादास पंडित आप बोलो कि क्या करें हम सब। तो फिर उन्होंने कहा कि आप लोग दोपहर को निमाई पंडित को लेकर मेरे पास आ जाओ। ये बच्चे बहुत खुश हो गए, तो निमाई पंडित इनके टीचर है, उनको लेकर ये सब पहुंचे और जैसे ही निमाई पंडित ने देखा अपने टीचर को, वैसे ही गुरु र चरण धूलि प्रभु श्री धरे, हाँ गंगादास पंडित के पास जाकर ऐसे ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए थे, गए और जाकर गुरु के चरण में झुक गए, चरण धूलि ले लिया अपने सर में लगाए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया विद्या लाभ हो, क्या आशीर्वाद दिया विद्या लाभ हो जाए। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ये चाहते नहीं थे, सबसे बड़ा अच्छा आशीर्वाद क्या है, कृष्णे मति रस्तु, कृष्ण में सर्वदा मति रहे। तो ये जब टीचर उनको कहने लगे कि हे निमाय तुम देखो तुम्हारी जो माँ है उनके जो पिता है वो भी इतने विद्वान है और तुम्हारे पिता मिश्र पुरंदर वो भी इतने विद्वान है, वो इतने विद्वान है दोनों, लेकिन दोनों भी अच्छे कृष्ण डिवोटीज है, तो ये तुमने कहां से नया कुछ लेके आए हो कि पढ़ना छोड़कर पढ़ाना छोड़कर केवल भक्ति भक्ति कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। जैसे डिवोटीज को भी कहते ना कि जब से ये इस्कॉन में गया है तब से हमेशा ये माला लेके घूमता रहता है, माला लेकर घूमता रहता है इधर उधर और हमेशा मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी और मंदिर और हमेशा छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए छुट्टियां चाहिए, ये फेस्टिवल आविर्भाव तिरुभाव व्यास पूजा कितनी सारी चीजें आती है। इस प्रकार से निमाय पंडित को वो कह रहे थे कि क्या ये सब आपको पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरा माथा मत खाओ, क्या कहा उन्होंने, एक श्लोक में कहते हैं व्यतिरिक्त अर्थ कर मोरा माथा खाए, कहते हैं तुम गलत गलत ये अर्थ बोलते रहते हो कृष्ण कृष्ण, जिसके द्वारा बच्चे आकर मेरा माथा खाते हैं, इसलिए अभी जब तुम जाओगे तो केवल सही सही व्याख्या करो, सही रूप से बच्चों को सिखाओ। अभी अंदर से तो गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी गुरु जी है तो उनको कुछ तर्क वितर्क नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने बोला अपने दम्भ को अंदर रखे, उन्होंने कहा नवद्वीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मैं बोलता हूं उसका खंडन करके दिखाए, और ऐसा बोल के वहां से चल पड़ते। बच्चों को कहते चलो, उन सबको लेके जाते, फिर जाते जाते देखा कि नवद्वीप में घर के सामने एक व्यक्ति योगासन में बैठा हुआ है और एक प्रकार से ढोंग कर रहा है बड़ा विद्वान होने का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और जोर से हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कई लोगों को देखा नवद्वीप में जो बहुत बड़े बड़े विद्वान अपने आप को बता रहे थे, जिन्होंने भट्टाचार्य आदि टाइटल स्वीकार किए थे, जो आपने आपको बड़े बड़े पंडित कहते थे, तो इन सबके प्रति चैतन्य महाप्रभु का बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि उनके गुरु जी ने उनको डांटा था। तो अभी ले गए बच्चों को पकड़कर और ऐसे स्थान में बैठे कि जहां से ये सब वहां नदी में जा रहे हो बड़े बड़े पंडित भट्टाचार्य, और फिर जैसा कोई पंडित बड़ा भट्टाचार्य वहां जाता था तो ये जोर से बोलते थे कि जिनको
शब्दों का ज्ञान भी नहीं है, वो उन्होंने बड़ा बड़ा टाइटल धारण किया है भट्टाचार्य। हमने आपको पंडित कहते, कोई नजदीक से जा रहा हो जानबूझ के बोलते थे, और अभी वो सब सोचे कि इतना विद्वान है, इसके पास जाकर इसको चैलेंज करना असंभव है। तो सब बड़े बड़े भट्टाचार्य पंडित सर मुंडी नीचे करके गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो आज उनको बहुत गुस्सा आ गया था, और आज की जो क्लास थी दोपहर को उन्होंने शुरू की, संध्या तक रात्रि तक चलाए, बच्चे भी परेशान। तो वहां कहते कि लेट नाइट तक क्लास चली और वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आज इतना बच्चों ने गुस्सा दिलवाया था और टीचर से उनके जो प्रिंसिपल है उनसे डांट लगवाए थे। फिर बाद में सब नवद्वीप के वासी कहते हैं कि आज ये कौन से भाव में है। और फिर देवाय पंडित बच्चों को कहते हैं कि जाओ सुख से निद्रा लो और फिर कल हम मिलेंगे। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन फिर अपने स्टूडेंट्स को लेकर निकले, तो रास्ते में एक महान भक्त का घर आता नवद्वीप में, जिनका नाम था रत्न गर्भ आचार्य। क्या नाम था? तो रत्न गर्भ आचार्य का जो घर था, वहां जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और वहां ये रत्न गर्भ आचार्य मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र को ये उपाधि सिर्फ संबोधित किया जाता था, मिश्र पुरंदर करके नवद्वीप के वासी उनको बुलाया करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र की ये मित्र थे और इन दोनों का ही जन्म एक ही स्थान में हुआ था, श्रीहट्ट, जो अभी बांग्लादेश में जिसको सिलेट कहते हैं या ढाका दक्षिण कहते हैं। तो ऐसे रत्नगर्भ आचार्य के तीन पुत्र थे, कृष्णानंद, यदुनाथ नंदन और जीव। तो ये रत्नगर्भ आचार्य श्रीमद भागवतम के बहुत प्रेमी थे, श्रीमद भागवतम को वर्णन करना मतलब नवद्वीप में इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इतना मधुरता से श्रीमद भागवतम का वर्णन कर सकता हो। और जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां आए और अब बैठने वाले थे तो उनके मुख से भागवतम का श्लोक निकला रत्नगर्भ आचार्य के मुख से। रत्नगर्भ आचार्य गाने लगे, श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरहम धातु प्रवाल नट वेश मनोव्रता से विन्यस्त हस्त मितरेन धनान वज्जम कर्णोत्पललाल कपोल मुखाब्जहासम। तो ये श्लोक उनके मुख से निकला और जैसे ही ये श्लोक सुना जिसमें वर्णन किया जा रहा था कृष्ण के सौंदर्य का, कि जब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गवें चराने के लिए गए थे और उनको बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने अपने ग्वाल सखाओं को ब्राह्मणों के पास भेजा कि जाओ कुछ भोजन है तो लेके आओ। ब्राह्मणों ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से। तो दुखी होकर कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण कहते कि जाओ, किसके पास जाओ? उनके पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास जाते हैं, पत्नियां जैसे कृष्ण का नाम सुनती है तो आनंदित हो जाती है, कृष्ण के लिए भोजन चाहिए, सब कुछ बड़े बड़े सुवर्ण थाल लेती है, उनमें इतना सारा भोजन भर देती है, हाथ में पकड़कर कहती है, वो बच्चों ने कहा हम लेके जाते, कहते रहे हम जाएंगे आपके साथ। और वो जा रही थी इस भावना से, कृष्ण को देखने जा रही है, घर वापस हम वापस आएंगे नहीं। हाँ, जैसे गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, तो कलकत्ता से आया था, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी नवद्वीप धाम में आ गया हूं। तो उन्होंने कहा रिटर्न टिकट लेके आए हो क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो इसका मतलब तुम धाम आए नहीं हो, धाम में आना मीन्स वापसी का टिकट नहीं लेना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। वास्तव में हम धाम जाना ही नहीं चाहते, जाने से पहले रिटर्न टिकट क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा वास्तव में तुम धाम नहीं आए हो। तो ये जो श्रीया निकल पड़ी और निकलते ही दूर से एक चीज देखी उन्होंने, कृष्ण को देखा, और क्या देखा है श्लोक में है, उन्होंने देखा कि उनका रंग श्यामल था, जो वस्त्र उनके सुनहरे थे, वे मोर पंख रंगीन खनिज फल की कलियों का गुच्छा
तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक के भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का नीला कमल का फूल क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। उनके दोनों कानों में कुमुदिनिया सुशोभित थी। कर्णिकारक फूल होता है जो कृष्ण हमेशा कान में डाल के चलते हैं जब वो गवे चराने जाते हैं। उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। तो इस प्रकार से जब इस सौंदर्य का देखा उन यज्ञ पत्नियों ने तो वो बहुत अधिक आनंदित हुई और इस श्लोक को सुना तो चैतन्य महाप्रभु फिर से क्या हो गए होंगे, और कुछ नहीं है, कुछ भी सुनते हैं कृष्ण से संबंधित सबसे पहले मूर्छा आ जाएगी, उन्हें सात्विक भाव प्रकट होने लगे और ये सारे जो उनके साथ स्टूडेंट्स चल रहे थे वो फिर से आश्चर्य से पागल हो गए और उनकी सेवा करने के लिए उनको पकड़ने के लिए वहां बैठे। कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी मूर्छा से वापस आते हैं और कहते बोलो बोलो, किसको कह रहे थे, रत्न गर्भाचार्य को, रिपीट करो वो श्लोक, मैं फिर से सुनना चाहता हूं। तो रत्न गर्भाचार्य बोलने लगे फिर से और फिर से वो प्रेमावेश में भूमि पर गिरते हैं, उठते हैं और फिर रोते रहते हैं। सारी भूमि आसमान से सिक्त हो गए थे और फिर से एक बार उठे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा तीव्रता से बोलो, मीन्स फास्ट बोलो ये श्लोक। रत्न गर्भाचार्य फिर इसी श्लोक को तीव्रता से बोलने लगे। जितना अधिक उनका तीव्रता से वो बोल रहे थे उतने ही अधिक कृष्ण के लिए जो प्रेम के विकार भाव के लक्षण चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृद्धिगत या बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उठे और रत्न गर्भ आचार्य का आलिंगन किया। उनका आलिंगन करने मात्र से जो रत्न गर्भ आचार्य है उनके आंसुओं से आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरणों को वो पकड़ते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वही चरण जिनको शिवजी और ब्रह्मा भी उनकी आराधना करते हैं उन चरणों को लेकर रत्न गर्भ आचार्य अपने वक्षस्थल या छाती पर रखते हैं और चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण भावावेश से बाहर नहीं आ रहे थे। तो गदाधर पंडित वहां थे। गदाधर पंडित ने कहा रत्न गर्भ आचार्य और श्लोकों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो रत्न गर्भ आचार्य ने श्लोक बंद किए और फिर चैतन्य महाप्रभु बाहर आते हैं, अपने बाह्य दशा में आते हैं और उन्होंने कहा अभी कुछ हुआ क्या। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ चंचलता प्रदर्शित की थी। बच्चों को पूछा, सारे स्टूडेंट्स को पूछा, कुछ चंचलता युक्त मैंने वर्तन किया था। तो बच्चे कहते, सारे स्टूडेंट्स कहते कि आप बहुत अधिक धन्य हो क्योंकि आपका जो भावावेश है उसके बारे में बोलना और उसको समझना हमारे लिए असंभव है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उन सबको कहते कि चलो अभी हम गंगा में चलते हैं। फिर गंगा के किनारे जाते हैं और गंगा को नमस्कार करते, दर्शन करते, जल अपने सर में डालते हैं और वाई फिर अपने क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रकार से गया से वापस आने के बाद इनका ये जो कार्यकलाप है कंटिन्यू रहा। और एक दिन जब मुकुंद संजय के घर में जब क्लास ले रहे थे सारे स्टूडेंट्स का और उसमें हरि नाम की महिमा बोल रहे थे तो एक बालक उसमें से कहा कि हे निवाय, आप जो बोल रहे हो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो हरि नाम की महिमा है कुछ आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। नाम अपराध है ना, अर्थवाद क्या है, हरि नाम में अर्थवाद का आरोप करना, मतलब हरि नाम की जो महिमा है उसको ये सोचना कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। फिर बालक ने जैसे ये बोला निमा आप बहुत बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति पूर्वक वचन बोल रहे हो, चैतन्य महाप्रभु का मुख ऐसे गंभीर हो गया, घृणा से उस बालक को देखने लगे और उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथ कान ऐसे बंद किए और वहां से दौड़ पड़े, अकेले नहीं सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे दौड़े, और दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु कहां गए? गंगा। जाते ही कपड़ों के सहित वस्त्रों के साथ गंगा में कूद पड़े और स्नान करके बाहर आते हैं, वो कहते कि अभी मैं शुद्ध हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में व्यक्ति को इस प्रकार के हरिनाम के प्रति अपराध युक्त वचनों को नहीं सुनना चाहिए। इसकी शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि ऐसे निंदक व्यक्तियों से हरिनाम या भगवान का नाम गुण लीला उनकी जो निंदा करते हैं उनके जो वचन है हमारे कानों में नहीं जाने चाहिए। हर व्यक्ति यदि कई बार गए भी तो हमें क्या करना चाहिए? प्रायश्चित हेतु गंगा में स्नान करना चाहिए वस्त्रों के साथ। फिर एक दिन ये बच्चे नया प्रश्न लेकर आ गए, उन्होंने पूछा बताओ निमाय पंडित और टीचर बताइए धातु किसे कहते हैं? क्या प्रश्न था? हाँ अभी तो आप समझ गए होंगे क्या बोला होगा चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण की जो शक्ति है उसे ही धातु कहते हैं। हाँ तो चैतन्य धातु मीन्स, बल्कि ये व्याकरण का प्रश्न था चैतन्य निमाय पंडित के लिए। हाँ तो जो वर्बल रूट शब्द का जो रूट है उसके बारे में वो बच्चे जानना चाह रहे थे स्टूडेंट्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में धातु कृष्ण की शक्ति है, और फिर उन्होंने कनेक्ट किया धातु मीन्स प्राण लाइफ या जीवात्मा। तो जिस व्यक्ति के शरीर में जब तक ये धातु है तब तक व्यक्ति उस व्यक्ति का आदर सम्मान आदि करता है। जब तक हमारे जीवन में आत्मा है शरीर में तब तक उस शरीर हमारे लिए क्या है? पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। फिर महाप्रभु बोलने लगे आत्मा के बारे में और इंपॉर्टेंस कृष्ण शक्ति का। उन्होंने कहा जैसे ही इस शरीर से आत्मा रूपी कृष्ण की शक्ति इसे छोड़ देती है तो कोई भी व्यक्ति उस शरीर के पास नहीं जाना चाहता। जो बालक अपने पिता के गोद में बचपन में खेलने कूदने में इतना आनंद ले रहा था, वही बालक अपने पिता से जब आत्मा शरीर से आत्मा चला जाता है तो वही बालक हाथ में आग लेकर उस पिता के मुख को जलाने लगता है, मुखाग्नि देता है। इस प्रकार से महाप्रभु ऐसी व्याख्या करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे बालको बोलो कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम अहर्निश कृष्ण चरण कर ध्यान। उन्होंने कहा कृष्ण बोलो कृष्ण का भजन करो और दिन रात अब कृष्ण का स्मरण आदि करो। इस प्रकार से जब महाप्रभु ऐसे बोलते रहे फिर अपनी बाह्य अवस्था में आए, कृष्ण प्रेम में इतने मग्न होते थे उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जो फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आते थे तो फिर वो लज्जित होकर उन्होंने पूछा आप सबको मेरी व्याख्या अच्छी लगी क्या? तो सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आपकी जो व्याख्या थी वो टॉप क्लास थी, परफेक्ट आपका जो तात्पर्य है टीका है, परंतु हम अपने हृदय में आपकी व्याख्या को धारण नहीं कर सकते। हमने तो आपको व्याकरण के बारे में पूछा था, आप हमें कहां ले चले गए? वृंदावन। आप कृष्ण के बारे में बोलने लगे। तो सबने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो सब कहने लगे कि वास्तव में कि मेरा दोष नहीं है कि मैं कृष्ण के लिए एक प्रकार से पागल हो गया हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जब बोलते हो और आपके इस भावावेश से लगता है कि आप कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साक्षात नारायण हो, नारायण नहीं तो शायद आप प्रहलाद व्यास शुकदेव आदि के कोई आवेशित अवतार हो। बच्चों ने कहा 10 दिन हो गए आप गया से आए हो और हम लोग 10 दिन से हमारा किताब खोल ही नहीं पा रहे हैं, तब से जो भी प्रश्न पूछो सबका उत्तर क्या है? एक है कृष्ण है। तो ऐसे सब उनको कहने लगे। तो महाप्रभु ने कहा कि आपने पहले बोलना चाहिए ना मुझे, क्या आपको समझ में नहीं आता? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो बालकों ने कहा हमें भय लग रहा था, भयवश हम आपको बोल नहीं रहे थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्यों नहीं आप बोल रहे थे? तो सारे बालक कहते हैं कि आप पंडित हो, अरे पंडित जो भी आप व्याख्या कृष्ण से संबंधित कर रहे हो वो भी एक प्रकार से उचित ही थी, लेकिन उसको स्वीकार करने के अधिकारी क्वालिफाइड हम नहीं थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं, और महाप्रभु जब उनकी ये बात सुनते हैं तो फिर उन बालकों ने कहा चाहे लेकिन आप व्याकरण के अलावा जो भी बोलते थे ना हमारे चित्त में बड़ा आनंद होता था। तो महाप्रभु ने देखा ये अनुकूल है, अभी हथौड़ा मारना होगा, ये थोड़े से अभी समझ रहे हैं कृष्ण के महत्व को। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। फिर महाप्रभु कहते हैं किसी को मत बताना। क्या कहते हैं? हाँ, बच्चे होते हैं ना किसी को बताते हैं। महाप्रभु ने कहा किसी को मत बताना मेरे साथ क्या हो रहा है। तो निमाय पंडित कहते हैं कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाए सबे देखी ताई भाया बलि सर्वथाय। तो आप थोड़ा सा समय लूंगा, दो चार मिनट। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाय सबे देखी ताई भाया बलि सर्वथाय। एक जो श्याम वर्ण का बालक है और वो हमेशा अपने अधरों पर मुरली रखता है और वो बजाता है और वो उसने ना मुझे आकर्षित करके रखा है अपने ओर, और जिसके कारण मैं अभी उसके लिए पागल हो गया हो और जहां भी देखता हो हे भाई मैं किसको देखता हो? कृष्ण को देखता हो। जतश्वनि श्रवणे सकल कृष्ण नाम सकल भुवन देखी गोविंद निरधाम। और मेरे कान उस कृष्ण के नामों के अलावा उसके गुरों के अलावा उनकी लीलाओं के अलावा कुछ और मुझे दूसरा सुनाई नहीं देता है। अब आप लोग जहां भी फिर जब सुंदर कानों में जाता है हृदय में प्रवेश कर गया है तो मैं संसार को भी देखता हूं तो ये गोविंद का धाम मुझे नजर आता है। इसलिए ना शुद्ध भक्त का ये लक्षण है जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं, उन्होंने कहा तोमा सबस्ताने मोरा एक परिहार आजा है ते आर पाठ नायक हमार। उन्होंने कहा आज से मैं आप प्रतिज्ञा करता हूं आप सबसे कि आज के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ये फाइनल उनका लेसन था। इसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि अब ये पढ़ना पढ़ाना बंद। तोमा सभा कार जार स्थाने चित्त लाए तार स्थाने पढ़ा में दिलाया निर्भय। महाप्रभु ने कहा जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उस शिक्षक के पास जाओ, आपको फ्री विल है उसके पास जाकर आप पढ़ो। महाप्रभु कहते कि कृष्ण के अलावा मुझे कुछ वाक्य स्फुरित नहीं हो रहा है और मैं सत्य कहूं तो मेरा चित्त भी किसी और चीज में नहीं लग रहा है। और ये कहकर चैतन्य महाप्रभु रो पड़े और उन्होंने जो अपना बुक जिससे पढ़ाते थे उसको बंद किया और रस्सी हुआ करते थे पुराने जमाने में ऐसे बांध दिया कि अभी ये बुक फिर से खुलेगा नहीं, अभी नया बुक खुला है। हाँ, कृष्ण कथामृत जो कृष्ण के लिए वो पागल हो गए हैं। जब महाप्रभु रोने लगे तो ये स्टूडेंट्स भी रो पड़े। इन सबने महाप्रभु को प्रणाम किया और उन्होंने कहा हम भी संकल्प करते हैं इसके बाद हमारी पढ़ाई भी बंद। ये कैसे संभव है कि जो मछली अमृत के सागर में तैरती थी वो मछली अभी लवण सागर लवण नमक खारे पानी के सागर में तैरना नहीं चाहती। तो महाप्रभु का टीचिंग अमृत के समान है, इसलिए चैतन्य चरित अमृत। उन्होंने कहा कि हम किसी और खारे पानी के सागर में तैरना नहीं चाहते, मतलब किसी और टीचर से सीखना नहीं चाहते, और हम एक ही चीज चाहते हैं, जो भी आपसे हमने अभी तक सुना है, अरे जो कृष्ण की व्याख्या, आप ये हमें आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर तक वो जो व्याख्या है हमारे हृदय में बनी रहे। तो ऐसे जब महाप्रभु ने उन बच्चों ने कहा, तो बच्चों ने भी अपना बुक उठाया, हर एक ने बुक उठाया, रस्सी ली और उसको बांध डाला, और जोर जोर से बच्चे बोल पड़े, हरी हरी, जोर से और जोर से। तो सारे बच्चों ने हरी हरी की ध्वनि की और सारे बालक रोने लगे। और फिर वहां करंदन मेला शुरू हुआ। कौन सा मेला? कीर्तन मेला नहीं, करंदन मेला। सारे रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के कहने लगे, उन बालकों ने कहा कि हम जागतिक भौतिक शिक्षा भी अभी हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम तो केवल ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसी को ही सीखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उन बालकों से इस प्रकार से चर्चा करते हैं। तो ये छोटा सा पास्टर मैं एंड करता हूं, तो आपका परमिशन हो तो, 9 बज गए हैं, और 2-3 मिनट प्लीज। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देवसे तो आने जदि हय कृष्णदास, तबे सिद्ध हो तो मां सबर अभिलाष। तो बच्चों ने अभिलाषा रखी बालकों ने कि हमारे हृदय में जो कृष्ण की छाप है वो बनी रहे। तो महाप्रभु ने कहा कि इतने दिनों में मैं एक दिन के लिए भी कृष्णदास सही में बना हूं, तो क्या हो जाए उसके बदले में आप सबकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। हाँ, महाप्रभु क्या कह रहे, कितने दिन के लिए? एक दिन में। आप सोचो, तो हमारे पास इतने दिन हम कृष्ण भावना में बिताते हैं, सोचना चाहिए कितने दिन हम माया के दास होते हैं, कितने दिन कृष्ण दास। तुम्हारे सकले लह कृष्ण शरण, कृष्ण नाम पूर्ण हो सबर वदन। उन्होंने कहा कि आप सब लोग कृष्ण की शरण ग्रहण करो, और आपका जो मुख है वो किस नाम से भर जाए, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
आप लोग कहते हैं जैसे बंगाल का रसगुल्ला आपके मुंह में होता है और आपका मुंह फुल उठता है, वैसे ही कृष्ण नाम अमृतमय आपके मुंह में रहे और वो भर जाए। निरवधि श्रवणे सुनह कृष्ण नाम, कृष्ण हो तो सबा काल धन प्राण। तो निरंतर कृष्ण नाम का स्मरण करो और कृष्ण आप सबके धन और प्राण बन जाए। जे पड़ेला से भाल आर कार्य नाय, सबे मेले कृष्ण बले वाओ एक थाय। तो जो भी पढ़ा है वो हो गया, अभी क्या करो, कृष्ण 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 रत्न पाए शास्त्र गुरु का सवार, तुम्हें सब जन्म जन्म बांधव अमार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में कृष्ण की कृपा से आपको सारे शास्त्रों का जितना भी ज्ञान आपको निर्णय है वो क्या हो जाएगा, स्फुरित हो जाएगा। तो महाप्रभु ये चाहते थे कृष्ण भक्ति में प्राधान्य होनी चाहिए, प्राथमिकता। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो अमृतमय वचन उन सब बालकों ने सुने, और सारे जो बालक है चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित हो गए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं तो बहुत अधिक वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत में इस लीला का वर्णन है, उसमें वो कहते कि मैं सर्वाधिक क्या हूं, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, आदम हूं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। मैं क्या करता हूं, जितने भी ये चैतन्य महाप्रभु के स्टूडेंट्स हैं, शिष्यगण हैं, या फिर ये जो छात्र है उनको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का छात्र, महाप्रभु के छात्र होना भी कोई छोटी बात नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी है। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी विद्या विलास की लीला है उसका समापन उन्होंने कर दिया, कि आज के बाद ना पढ़ाऊंगा किसे, ना किसी को पढ़ना है, केवल क्या करना है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि आज भी आप नवद्वीप जाओगे तो वहां महाप्रभु के इन शिक्षाओं के चिन्ह प्राप्त होते हैं। इसलिए वो एक श्लोक कहते हैं, अद्याप्य सही लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में लीलाएं करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? भाग्यवान व्यक्ति ही चैतन्य चंद्र की जो दिव्य लीला है उनको अपने आंखों से या हृदय से नवद्वीप वैष्णो धाम में देख सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ विराम देते हैं अपने लीलाओं का, और कल से हम सुनेंगे कि का पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संकीर्तन शुरू किया। फर्स्ट संकीर्तन का जो आरंभ है चैतन्य महाप्रभु ने कैसे और किया, और फिर नवद्वीप में ये जो संकीर्तन की बाढ़ है वो चैतन्य महाप्रभु ने ला दी। हरे कृष्णा श्री श्री चैतन्य चरितामृत के चैतन्य भागवत के श्री कृष्णदास कविराज के श्री वृंदावन दास ठाकुर के पति पावन श्री प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद की गौर कथामृत की गौर प्रेमणत्ते।